अध्याय 8 छुपा हुआ खजाना। यह अध्याय मत्ती 13 आयत 44 पर आधारित है। फिर से, स्वर्ग का राज्य एक क्षेत्र में छिपे हुए खजाने के समान है, जो कि एक आदमी ने पाया और उसे छिपा दिया, और आनंद के कारण उसने और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। प्राचीन समय में यह प्रथा थी कि पुरुष अपने खजाने को पृथ्वी में छिपा लेते थे। चोरी और डकैती अक्सर होती थी, और जब भी सत्तारूढ़ सत्ता में कोई परिवर्तन हुआ, जिनके पास बड़ी संपत्ति थी, उन्हें भरी श्रद्धांजलि के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। इसके अलावा देश पर सेनाओं के आक्रमण से लगातार खतरा था। परिणाम स्वरूप अमीरों ने इसे छिपाकर अपनी संपत्ति को संरक्षित करने का प्रयास किया, और पृथ्वी को एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखा गया। लेकिन अक्सर छिपाने की जगह को भुला दिया जाता था। मौत मालिक पर दावा कर सकती है, कारावास या निर्वासन उसे अपने खजाने से अलग कर सकती है, और जिस धन को उसने संरक्षित करने के लिए इस प्रकार का दर्द उठाया है, वह भाग्यशाली खोजक के लिए छोड़ दिया गया था। मसीह के दिन में सोने और चांदी के उपेक्षित भूमि, पुराने सिक्कों और आभूषणों में खोज करना असामान्य नहीं था। एक व्यक्ति खेती करने के लिए भूमि लेता है। जैसे ही बैलों ने जमीन को खोदा, हल चलाकर उस व्यक्ति को खजाने का पता चलता है, और वो सोचता है कि ये खजाना उसकी पहुंच के भीतर है। सोने को उसने खेत में छिपा दिया और घर लौटकर अपने मौजूद सभी सामान को बेच देता है, ताकि खजाने वाले खेत को खरीद सके। उसका परिवार और उसके पड़ोसी सोचते हैं कि वह पागल की तरह काम कर रहा है। मैदान को देखते हुए वे उपेक्षित मिट्टी में कोई मूल्य नहीं देखते हैं। लेकिन आदमी जानता है कि वह क्या कर रहा है, और जब उसके पास क्षेत्र के लिए एक शीर्षक होता है, तो वह उस खजाने को खोजने के लिए उसके हर हिस्से को खोजता है जिसे हासिल किया है। दृष्टांत ने स्वर्गीय खजाने के मूल्य को दर्शाया है, और इसे सुरक्षित करने के लिए किए जाने वाले प्रयास को दर्शाता है। क्षेत्र में खजाने का पता लगाने के लिए सभी के पास भाग लेने के लिए तैयार था, जो कि उसके पास छिपे हुए धन सुरक्षित करने के लिए अथक श्रम लगाने के लिए तैयार था। इसलिए स्वर्ग के खजाने का खोजक सच्चाई के खजाने को हासिल करने के लिए न तो श्रम को बहुत मान और न ही बहुत अधिक बलिदान को भी निभाएगा। दृष्टांत में खजाना युक्त क्षेत्र पवित्र शास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है और सुसमाचार का खजाना है। पृथ्वी अपने आप में स्वर्ण शिराओं के साथ परस्पर जुड़ी नहीं है और अनमोल चीजों से भरी हुई, जैसा कि परमेश्वर का वचन है। कितना छिपा हुआ। कहा जाता है कि सुसमाचार का खजाना छिपा हुआ है उन लोगों द्वारा जो अपने स्वयं के अनुमान में बुद्धिमान हैं, जो व्यर्थ दर्शन के शिक्षण में प्रभावित है, मोचन की योजना की सुंदरता और शक्ति और रहस्य को नहीं माना जाता है। बहुतों की आंखें हैं, लेकिन वे नहीं देखते हैं। उनके कान हैं, लेकिन वे सुनते नहीं हैं। उनके पास बुद्धि है, लेकिन छिपे हुए खजाने की नहीं। एक आदमी उस जगह से गुजर सकता है जहां खजाना छुपाया गया था। अत्यंत आवश्यकता में वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ सकता है, न कि उसकी जड़ों में छिपे हुए धन के बारे में। ऐसा ही यहूदियों के साथ था। एक सुनहरे खजाने के रूप में सच्चाई इब्रानी लोगों को दी गई थी। यहूदी अर्थव्यवस्था स्वर्ग के हस्ताक्षर को वहन करते हुए स्वयं मसीह द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें प्रकार और प्रतीकों में छुटकारे के महान सत्य पर पर्दा डाला गया था। फिर भी जब मसीह आया तो यहूदियों ने उसे नहीं पहचाना, जिनके लिए इन सभी प्रतीक ने संकेत दिया था। उनके हाथों में परमेश्वर का वचन था, लेकिन जो परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं और शास्त्रों की मानवीय व्याख्या उनसे छिपी थी, जैसा कि यीशु में है। पवित्र लेखन का आध्यात्मिक आयात खो गया था। सभी ज्ञान का खजाना उनके लिए खुला था, लेकिन वे ये नहीं जानते थे। ईश्वर पुरुषों से अपनी सच्चाई नहीं छिपाता है। कार्रवाई के अपने पाठ्यक्रम के द्वारा वे इसे अपने लिए अस्पष्ट बनाते हैं। मसीह ने यहूदी लोगों के प्रचुर प्रमाण दिया कि वो मसीह था, लेकिन उनके शिक्षण ने उनके जीवन में उसके निश्चित बदलाव लाने का आह्वान किया। उन्होंने देखा कि यदि वे मसीह को प्राप्त करते हैं तो उन्हें अपने पोषित अधिकतम और पनपराओं अपने स्वार्थी अधर्मी व्यवहारों को छोड़ देना चाहिए। उसे अपरिवर्तनशील शाश्वत सत्य प्राप्त करने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता थी। इसलिए वे उन सबसे निर्णायक सबूतों को स्वीकार नहीं करेंगे जिन्हें परमेश्वर मसीह में विश्वास स्थापित करने के लिए दे सकता है। उन्होंने पुराने नियम के ग्रंथों पर विश्वास करना स्वीकार किया, फिर भी उन्होंने मसीह के जीवन से संबंधित एक गवाही को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे आश्वस्त होने से डरते थे कि कहीं ऐसा न हो कि उनका धर्मांतरण कर दिया जाए और उन्हें अपनी पूर्व राय देने के लिए मजबूर होना पड़े। सुसमाचार का मार्ग सत्य और जीवन उनमें से एक था, लेकिन उन्होंने सबसे महान उपहार को अस्वीकार कर दिया जो स्वर्ग को सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। मुख्य शासकों में से बहुत से लोग उन पर विश्वास करते थे, हम पढ़ते हैं, लेकिन फरीसियों के कारण उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें आराधनालय से बाहर कर दिया जाना चाहिए। यूहन्ना 12 आयत 42। वे आश्वस्त थे, वे यीशु को ईश्वर का पुत्र मानते थे, लेकिन ये उसे स्वीकार करने की उनकी महत्वाकांक्षी इच्छाओं के अनुरूप नहीं था। उन्हें विश्वास नहीं था कि उनके लिए स्वर्गीय खजाना होगा। वो सांसारिक खजाना चाह रहे थे, और आज पुरुष बेसब्री से सांसारिक खजाने की तलाश कर रहे हैं। उनके मन स्वार्थी महत्वाकांक्षी विचारों से भरे होते हैं। सांसारिक धन, सम्मान या शक्ति प्राप्त करने के लिए वे ईश्वर की आवश्यकताओं के ऊपर पुरुषों की परंपराओं और आवश्यकताओं को रखते हैं। उनसे उनके वचन के खजाने छिपे हुए हैं। प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की चीजों को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि वे उसके प्रति मूर्खता करते हैं। ना तो वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से विवेकी है। 1 कुरिन्थियों 2:4। यदि हमारे सुसमाचार को छिपाया गया है तो ये उन लोगों के लिए छिपा है जो खो गए हैं, जिनमें इस दुनिया के ईश्वर ने उन लोगों के दिमागों को अंधा कर दिया है जो मानते हैं कि नहीं, मसीह के शानदार सुसमाचार का प्रकाश डाले जो ईश्वर की छवि है उन पर चमकाना। 2 कुरिन्थियों 4:3-4। खजाने का मूल्य। उद्धारकर्ता ने देखा कि पुरुष लाभ पाने में लीन थे और शाश्वत वास्तविकताओं को खो रहे थे। उन्होंने उस बुराई को ठीक करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने आत्मा को पंगु बनाने वाले असाध्य जादू को तोड़ने की कोशिश की। मनुष्य को क्या फायदा है अगर वह पूरी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी आत्मा को खो दे? या एक आदमी अपनी आत्मा के बदले में क्या देगा? 16:26। वो मानवता को उस महान दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है जिसे उन्होंने खो दिया है। वे शाश्वत वास्तविकताओं को देख सकते हैं। वो उन्हें अनंत की दहलीज पर ले जाता है, ईश्वर की अवर्णनीय महिमा के साथ कहता है, और उन्हें वहां खजाना दिखता है। इस खजाने का मूल्य सोने या चांदी से ऊपर है। पृथ्वी के खजानों के धनी तुलना नहीं कर सकते हैं। अथाह सागर कहता है, वो मुझमें नहीं है, और समुद्र भी कहता है, वो मेरे पास नहीं है। चोखे सोने से वो मोल नहीं लिया जाता, और न उसके दाम के लिए चांदी तोली जाती है। न तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है, और न अनमोल सुलेमानी पत्थर का नीलमणि को, न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वो नहीं मिलती। मूंगे और स्फटिक मणि की उसके आगे क्या चर्चा? बुद्धि का मोल मणिक से भी अधिक है। 28:14-18। ये वो खजाना है जो शास्त्रों में पाया जाता है। बाइबल परमेश्वर की महान पाठ पुस्तक, उसकी महान शिक्षावत है। सभी सच्चे विज्ञानों की नींव बाइबल में निहित है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा ईश्वर के शब्द को खोज कर मिल सकती है, और सबसे ऊपर इसमें सभी विज्ञानों का ज्ञान है, मोक्ष का विज्ञान है। बाइबल मसीह की बेशुमार दौलत की खान है। सच्ची उच्च शिक्षा ईश्वर के शब्द का अध्ययन और पालन करने से प्राप्त होती है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उन पुस्तकों के लिए अलग रखा जाता है जो परमेश्वर और स्वर्ग के राज्य की ओर नहीं ले जाती है, तो शिक्षा दी जाने वाली शिक्षा नाम की विकृति है। प्रकृति में अद्भुत सत्य है। पृथ्वी, समुद्र और आकाश सत्य से परिपूर्ण है। वे हमारे शिक्षक हैं। प्रकृति उसकी आवाज को स्वर्गीय ज्ञान और शाश्वत सत्य के पाठों प्रस्तुत करती है, लेकिन गिरा हुआ आदमी समझ नहीं पाएगा। पाप ने उसकी दृष्टि को अस्पष्ट कर दिया है और वो स्वयं को ईश्वर के ऊपर रखे बिना प्रकृति की व्याख्या नहीं कर सकता है। सही सबक उन लोगों के दिमाग को प्रभावित नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करते हैं। प्रकृति की शिक्षा उनके द्वारा इतनी विकृत है कि ये मन को रचनाकार से दूर कर देती है। बहुत लोगों के अनुसार मनुष्य की बुद्धि को दिव्य शिक्षक के ज्ञान से अधिक माना जाता है और ईश्वर की सबक पुस्तक को पुराने जमाने, बासी और निर्बत के रूप में देखा जाता है। लेकिन जो पवित्र आत्मा द्वारा वशीभूत हुए हैं, उनके द्वारा ऐसा नहीं माना जाता है। अनमोल खजाने को देखे और सभी को उस क्षेत्र को खरीदने के लिए बेच दिया जाएगा जिसमें वो शामिल है। प्रतिष्ठित महान लेखकों की पुस्तकों को रखने के बजाय वे उसी शब्द का चयन करते हैं जो सबसे महान लेखक है और दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक जिसे कभी माना जाता है, जिसने हमारे लिए अपना जीवन दिया है कि उसके माध्यम से हम हमेशा के लिए जीवन जी सकते हैं। खजाने के उपेक्षा करने के परिणाम। शैतान मानव पर काम करता है जिससे उन्हें लगता है कि ईश्वर से अलग होने के लिए अद्भुत ज्ञान है। भ्रामक तर्क के द्वारा उसने आदम और हवा को परमेश्वर के वचन पर संदेह करने के लिए और सिद्धांत के साथ उन्होंने अवज्ञा की, और उसका परिष्कार आज वही कर रहा है जो उसने साथ बेवफा लेखकों की भावनाओं का मजाक उड़ाया जाता है। युवा विचारों को ध्यान में रखते हुए ईश्वर का अविश्वास और उनके कानून का उल्लंघन थोड़ा। वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। थोड़ा उन्हें एहसास है कि उनके काम का परिणाम क्या होगा। एक छात्र के स्कूलों और कॉलेजों के ग्रेड के बारे में सोच सकता है। वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति समर्पित कर सकता है, लेकिन जब तक उसे ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा, जब तक कि वह अपने शासन को चलाने वाले कानून का पालन नहीं करता है, तब तक वह खुद को नष्ट कर देगा। गलत आदतों से वह आत्म प्रशंसा की शक्ति खो देता है। वह आत्मनियंत्रण खो देता है। वह उन मामलों के विषय में सही ढंग से नहीं बता सकता है जिसकी उसकी सबसे अधिक चिंता रहती है। वह अपने और शरीर के उपचार के लापरवाह और तर्कहीन है। गलत आदतों से वह खुद को एक मलबा बनाता है। खुश वह नहीं हो सकता है। यह शुद्ध स्वस्थ सिद्धांतों की खेती करने की उपेक्षा उसे उन आदतों के नियंत्रण में रखती है जो उसकी शांति को बर्बाद करती है। उनके वर्षों के किए अध्ययन खो गए हैं क्योंकि उसने खुद को नष्ट कर लिया है। उन्होंने अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का दुरुपयोग किया है और शरीर को खस्ताहाल खंडहर कर लिया है। वह अपने आने वाले जीवन के लिए भर्ती है। सांसारिक ज्ञान प्राप्त करके उसने एक खजाना हासिल करने के लिए संघर्ष किया है, लेकिन अपनी बाइबल को एक तरफ रखकर उसने बाकी सभी चीजों के लिए एक खजाना त्याग दिया। यात्रा के लिए खोज। ईश्वर का शब्द हमारे अध्ययन के लिए है। हम अपने बच्चों को उसमें पाई जाने वाली सच्चाइयों को शिक्षित करना चाहते हैं। ये एक अटूट खजाना है, लेकिन पुरुष इस खजाने को पाने में असफल रहते हैं क्योंकि वो तब तक नहीं खोजते तब तक उनके कब्जे में नहीं है। बहुत से लोग सच्चाई के संबंध में एक तर्क के साथ संतुष्ट हैं। वे एक सतह के काम के साथ संतुष्ट हैं, ये मानते हुए कि उनके पास वो है जो जरूरी है। दूसरे के कहने को सत्य के लिए लेते हैं। खुद को परिश्रमी बनाना श्रम में लगाने के लिए बहुत अकर्मण्य होते हैं। छिपे हुए खजाने के लिए शब्द के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन मनुष्य के आविष्कार न केवल अविश्वसनीय है, वे खतरनाक है, क्योंकि वे मनुष्य को ये स्थान देते हैं जहां परमेश्वर होना चाहिए। उन्होंने पुरुषों की बातें रखी जहां इस प्रकार ईश्वर कहता है होना चाहिए। मसीह सत्य है, उनके शब्द सत्य हैं, और सतह पर दिखने की तुलना में उनका गहरा महत्व है। यीशु की सभी बातों का उनके स्पष्ट रूप से परे एक मूल्य है। पवित्र आत्मा द्वारा त्वरित किए जाने वाले मन इन कथनों के मूल को समझेंगे, वे सत्य के अनमोल रत्नों को समझेंगे, हालांकि ये दफन किए गए खजाने हो सकते हैं।
मानवीय सिद्धांत और अटकलें कभी भी परमेश्वर के वचन की समझ में नहीं आएंगी। जो लोग मानते हैं कि वे दर्शन को समझते हैं, उन्हें लगता है कि ज्ञान के खजाने को खोलने और विधर्मियों को चर्च में आने से रोकने के लिए उनकी व्याख्या आवश्यक है, लेकिन ये इन व्याख्याओं को गलत सिद्धांतों और विधर्मियों में लाया है। पुरुषों ने ये समझाने के लिए बेताब प्रयास किए हैं कि वे जटिल शास्त्र क्या समझते हैं, लेकिन बहुत बार उनके प्रयासों से केवल इतना ही अंधेरा होता है जिसे उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की। याजकों और फरीसियों को लगा कि वे परमेश्वर के वचन पर अपनी व्याख्या डालकर शिक्षकों के रूप में महान काम कर रहे हैं, लेकिन मसीह ने उनसे कहा, तुम न तो शास्त्रों को जानते हो न ही परमेश्वर की शक्ति को। मरकुस 12:24। उन्होंने उन पर पुरुषों के आदेशों को सिद्ध करने के लिए शिक्षण के अपराध का आरोप लगाया। मरकुस 7:7। यद्यपि वे उसके वचन को समझने वाले थे, वे शब्द के कर्ता नहीं थे। शैतान ने अपनी आंखें मूंद ली थीं कि उन्हें इसका सही आयात नहीं देखना चाहिए। ये हमारे समय में बहुतों का काम है। बहुत सी कलीसियाएं पाप की दोषी है। खतरे भयवाह खतरा है कि आज के कथित बुद्धिमान लोग यहूदी शिक्षकों के अनुभव को दोहराकर भविष्यवाणी की झूठी व्याख्या करते हैं और आत्मा को दिव्य सत्य के बारे में गलत धारणा के कारण अंधकार में लाया जाता है और अंधेरे में बहा दिया जाता है।
परंपरा या मानवीय अटकलों के मंद प्रकाश द्वारा शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी तरह से हम मानव परंपरा या कल्पना द्वारा शास्त्रों को समझने के लिए एक मशाल के साथ सूर्य को प्रकाश देने की कोशिश कर सकते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन को अपनी महिमाओं को अलग पहचान देने के लिए पृथ्वी की मशाल की रोशनी की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप में प्रकाश है। ईश्वर की महिमा का पता चला और इसके बगल में हर दूसरा प्रकाश मंद है। लेकिन बयान अध्ययन और करीबी जांच होनी चाहिए। सत्य की तीव्र स्पष्ट धारणाएं कभी भी अकर्मण्यता का प्रतिफल नहीं होगी। कोई भी सांसारिक आशीर्वाद बयाना रोगी प्रयास के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि पुरुष व्याख्या में सफलता प्राप्त करते हैं तो उन्हें परिणाम देखने के लिए इच्छा शक्ति और विश्वास होना चाहिए, और हम बयाना परिश्रम के बिना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की उम्मीद नहीं करते हैं। जो लोग सत्य के खजाने को खोजने की इच्छा रखते हैं, उन्हें उनके लिए खोदना चाहिए, क्योंकि खनिक भर्ती में छिपे खजाने के लिए खोदता है। कोई आधा अधूरा उदासीन काम नहीं करेगा। यह केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि पुराने और युवा लोगों के लिए भी आवश्यक है। इसे पूरी ईमानदारी के साथ अध्ययन करने, प्रार्थना करने और छिपे हुए खजाने के रूप में सत्य की खोज करने के लिए। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें मसीह के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, समझ को जल्दी किया जाएगा।
हमारा उद्धार शास्त्र में निहित सत्य के ज्ञान पर निर्भर करता है, या ईश्वर की इच्छा है कि हम इसके अधिकारी हों। ढूंढो, ओ भूखों दिलों के साथ कीमती बाइबल में खोजें। ईश्वर के वचन का अन्वेषण करें, क्योंकि सोने की खान की नसों को खोजने के लिए पृथ्वी की खोज करनी पड़ती है। जब तक आप अपने संबंध में ईश्वर और उसकी इच्छा के संबंध में पता नहीं लगाते हैं, तब तक खोज को कभी मत छोड़ें। मसीह ने घोषणा की, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पिता पुत्र में महिमा मंडित हो सके। यदि तुम मेरे नाम में कुछ भी मांगोगे तो मैं करूंगा। यूहन्ना 14:13-14। धर्मनिष्ठा प्रतिभा के लोग शाश्वत वास्तविकताओं के विचारों को पकड़ते हैं, लेकिन अक्सर वे समझने में असफल होते हैं, क्योंकि जो चीजें देखी जाती है वे अनदेखी की महिमा को ग्रहण करती है। जो छिपे खजाने के लिए सफलतापूर्वक खोजेगा उसे इस दुनिया की चीजों की तुलना में अधिक खोज करनी होगी। उनके स्नेह और उनकी सभी क्षमताओं की खोज के अनुरूप होना चाहिए। अवज्ञा ने ज्ञान की एक बड़ी मात्रा के लिए दरवाजा बंद कर दिया है, जो शायद शास्त्रों से प्राप्त किया गया है। समझ का मतलब है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। पुरुषों के पूर्वाग्रह और ईर्ष्या को पूरा करने के लिए शास्त्रों का अनुकूलन नहीं किया जा सकता है। उन्हें केवल उन लोगों द्वारा समझा जा सकता है जो विनम्रता पूर्वक सत्य के ज्ञान की तलाश में हैं कि वे इसका पालन कर सकें।
क्या आप पूछते हैं मुझे बचने के लिए क्या करना चाहिए?
जांच के द्वारा आपको अपनी पूर्व निर्धारित राय, अपने विधर्मी और संस्कष्ट विचारों को रखना होगा। आप कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंचेंगे। प्रभु क्या कहता है यह जानने के लिए खोजे। यदि आप खोज के अनुसार दृढ़ विश्वास करते हैं, यदि आप देखते हैं कि आपकी पोषित राय सच्चाई के साथ नहीं है, तो स्वयं के विश्वास के अनुरूप सत्य की गलत व्याख्या न करें, लेकिन दिए गए प्रकाश को स्वीकारें। खुले दिल से आप परमेश्वर के वचन से चमत्कारिक बातें देख सकते हैं। मसीह के रूप में, मसीह उद्धारकर्ता के रूप में प्रबुद्ध की स्वीकारता के लिए कहता है, जो एक दिल से नियंत्रित होता है, जो स्वर्ग के खजाने को समझ सकता है और उसकी सराहना कर सकता है। ये विश्वास प्रतिपदा के परिवर्तन से अविभाज्य है। विश्वास का अर्थ है सुसमाचार की खोज को खोजने और स्वीकार करने के लिए सभी दायित्व के साथ जो इसे लागू करता है। जब तक एक आदमी फिर से जन्म ना ले, वो ईश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। यूहन्ना 3:3। वो एक मंदबुद्धि व्यक्ति का अनुमान देख सकता है, लेकिन विश्वास की आंख के बिना वो खजाना को सुरक्षित करने के लिए दिया, लेकिन उनके रक्त में विश्वास के माध्यम से पुनर्जन्म के बिना पापों का कोई त्याग नहीं है, किसी भी आत्मा का खजाना नहीं है।
हमें परमेश्वर के वचन में सत्य को समझने के लिए पवित्र आत्मा के ज्ञान की आवश्यकता है। प्राकृतिक दुनिया की प्यारी चीजों की सूरत तक नहीं देखी जा सकती है। अंधेरे को तितर वितर करते हुए उन्हें अपने प्रकाश के साथ प्रवाहित करना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में कोषाध्यक्षों की सराहना नहीं की जाती है, जब तक कि वे धार्मिकता के सूर्य की उज्ज्वल किरणों से प्रकट से नहीं होते हैं। पवित्र आत्मा अनंत प्रेम के परोपकार द्वारा स्वर्ग से भेजा गया ईश्वर की चीजों को लेता है और उन्हें हर आत्मा को प्रकट करता है जो मसीह में एक अंतर्निहित विश्वास है। उनकी शक्ति से उन महत्वपूर्ण सत्यों पर जिन पर आत्मा का उद्धार निर्भर करता है, वे मन को प्रभावित करते हैं और जीवन का मार्ग इतना सादा बना दिया जाता है कि उसमें किसी को भी जरूरत नहीं है। जैसा कि हम इस वचन पर चमकने के लिए अध्ययन करते हैं कि हम इसके कोषाध्यक्षों को देख और सराह सकते हैं। खोज की समीक्षा।
कोई ये न सोचे कि उन्हें हासिल करने के लिए अधिक ज्ञान नहीं है। मानव बुद्धि की गहराई को मापा जा सकता है। मानव संपदा के कार्यों में महारत हासिल की जा सकती है, लेकिन कल्पना की उच्चतम, सबसे गहरी, चौड़ी उड़ान ईश्वर का पता नहीं लगा सकती। सबसे परे अनंत है जिसे हम समझ सकते हैं। हमने केवल दिव्य महिमा की झलक देखी है और ज्ञान के आविष्कार की। हमारे पास, जैसा कि ये खदान की सतह पर काम कर रहा था, जब अमीर स्वर्ण अयस्क सतह के नीचे होता है, तो उस व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए जो इसके लिए खुदाई करेगा। शाफट खुदान में गहरा और अभी तक गहरा होना चाहिए और परिणाम शानदार खजाना होगा। एक सही विश्वास के माध्यम से दिव्य ज्ञान मानव ज्ञान बन जाएगा। बिना पुरस्कृत किए मसीह की आत्मा में कोई भी शास्त्र नहीं खोज सकता है। जब मनुष्य एक छोटे बच्चे के रूप में निर्देश लेने को तैयार होता है, जब वह परमेश्वर को पूरी तरह से नमन करता है, तो वह वचन में सच्चाई पाएगा। यदि पुरुष आज्ञाकारी होगे, तो वे परमेश्वर की सरकार की योजना को समझेंगे। स्वर्गीय दुनिया अन्वेषण के लिए अनुग्रह और महिमा के अपने कक्ष खोलेगी। सत्य मनुष्य की खदानों की खोज के लिए मानव जाति पूरी तरह से अलग है जो अब तक बेकार है। छुटकारे का रहस्य। मसीह का अवतार, उनका प्रायश्चित बलिदान वैसा नहीं होगा जैसे वे अब है। हमारे दिमाग में अस्पष्ट है। उन्हें न केवल बेहतर समझा जाएगा, बल्कि पूरी तरह से अधिक सराहना की जाएगी।
परमेश्वर की प्रार्थनाओं में मसीह ने दुनिया को एक सबक दिया जो मन और आत्मा पर आधारित होना चाहिए। ये जीवन अनंत है, उन्होंने कहा, और आत्मा पर आधारित होना चाहिए। ये जीवन अनंत है, उन्होंने कहा, कि वे आपको एकमात्र सच्चे ईश्वर और यीशु मसीह को जान सकते हैं जिसे तूने भेजा है। यूहन्ना 17:3। यही सच्ची शिक्षा है, ये शक्ति प्रदान करता है। ईश्वर और यीशु मसीह के अनुभव ज्ञान जिसे उन्होंने भेजा है मनुष्य को ईश्वर की छवि में बदल देता है। ये मन की उच्च शक्तियों के नियंत्रण में निम्न प्रकृति के लिए आवेग और जुनून लाने के लिए मनुष्यों को खुद की महारत देता है। ये अपने स्वामी को ईश्वर का पुत्र और स्वर्ग का उत्तराधिकारी बनाता है। ये उसे अनंत दिमाग के साथ समय मिलाता है, उसे ब्रह्मांड के समृद्ध खजाने के लिए खोलता है। वो ये ज्ञान है जो ईश्वर के वचन की खोज से प्राप्त होता है। ये खजाना हर आत्मा को मिल सकता है जो इसे प्राप्त करने के लिए सभी को देगा। यदि तुम ज्ञान के बाद कुछ हो और वे समझने के लिए आवाज उठाते हैं, यदि तुम उसे चांदी के रूप में खोजते हो और समझो और ईश्वर का ज्ञान पाओ। नीति वचन 2:3-5।